الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعظيم وصدق رسوله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غير محترم دوستو بزرگو بھائیو صبح 10:30 کمر عالم کا فون آیا کہ حضرت کی طبیعت بہت ناساز ہے تو میں نے پھر اپنا پروگرام آج جمعہ کا ہاو اسٹریٹ میں تھا اس کو کینسل کیا اور پھر میں یہیں آ گیا تو حضرت کے لیے دعا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا نصیب فرمائے کچھ وامٹ وغیرہ ہوئی وغیرہ شکر کی مریض ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے عصر کے بعد انشاءاللہ خیر مجھے تو ہر وقت ریڈی رہنا پڑتا ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے اس امت پر اتنا بڑا معجزہ دنیا میں کسی کا باقی نہیں ہے کسی نبی کا باقی نہیں جو معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ طلبہ جو قرآن کریم کو دین رات دین یاد کرتے ہیں اور حافظ بنتے بنتے ان کو 5 سال 6 سال لگ جاتے ہیں ان سے زیادہ کون قرآن پڑھنے والا ہوگا وہی لوگ وقت کے ولی بنتے ہیں قرآن کریم کثرت سے ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کو پیار آتا ہے بلکہ وہ جو کھانا بھی کھاتے ہیں اس کھانے میں بھی اللہ برکت ڈال دیتے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں اناج نہیں تھا پہلے لوگ پیسہ دیتے تھے لیکن بعد میں ضرورت پڑی غلہ کی اتنا بڑا مدرسہ ہے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ تو چاہیے سو حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلسہ رکھا اس کا نام غلہ اسکیم اطراف سے لوگوں کو جمع کیا کہ بھائی مدرسے کو رائس کی ضرورت ہے ویٹ کی ضرورت ہے گیہوں کی اور بارلی کی ضرورت ہے جو کی ضرورت ہے تو سارے اطراف کے قریباً 15,000 لوگ جمع ہو گئے جلسے میں اور یاد رکھو مدرسے کے محتمین کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سال گزارنا ہے بچوں کے لیے ہم ایک ویڈنگ رکھتے ہیں اس میں پریشان ہو جاتے ہیں ہم 100 آدمی کی کھلانے کا ایک شادی کھلانا رکھتا ہے تو اس میں پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ تو پورا سال صبح دوپہر شام کھلانا ہوتا ہے ان کی مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے مسجد اللہ کا گھر ہے مدرسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے دارالعلوم سہارنپور میں جب غلہ کی کمی ہوئی
उस जमाने में नाजिम तालेमात और मोहतमी मौलाना असदुल्ला साहब थे। मौलाना असदुल्ला साहब मौलाना जकरिया साहब के उस्ताद होते हैं, बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े आलिम है। उस दिन मैंने मौलाना असदुल्ला साहब के बारे में सुनाया कि उनके खादिम कारी सिद्दीक साहब थे, बांदवी रहमतुल्लाह, खादिम खास। वो फरमाते हैं रोजाना हजरत, रोजाना 6 मरतबा 7 मरतबा 10 मरतबा सलाबु तस्बी पढ़ते थे। बनियान था ना, बनियान धोने के लिए मैला हो गया था, कहा लो बनियान लाओ हजरत मैं धो देता हूं, कपड़े धोते थे सब कुछ। मौलाना असदुल्ला साहब ने कहा ठीक है मेरा बनियान धो लो, धो करके सुखाया, लेकिन उनके जेब में एक छोटी सी पर्ची थी, उसको पढ़ लिया, उसमें नंबरात लिखे हुए थे, उसमें नंबरात लिखे हुए थे। बाद में जब बनियान धो करके देने के लिए पहुंचे तो हजरत ने फरमाया, मौलाना कारी सिद्दीक साहब ने खुद लिखा है उन्होंने कि हजरत मैंने आपका ये खत पढ़ लिया, उसमें आपके नंबरात लिखे हैं। फरमाया तुम्हें पता नहीं अबू दाऊद शरीफ में है कि अगर किसी का खत पढ़े तो ऐसा है बोला तुम जहन्नम में देख रहे हो, खत में नहीं देख रहे, किसी का खत पढ़ना ऐसा है गोया कि तुम किस में देख रहे हो, जहन्नम में देख रहे हो। अबू दाऊद शरीफ हदीस है, हम तो वैसे ही पढ़ लेते हैं, तो पता भी नहीं होता है, कभी भाई का पढ़ लिया, कभी बहन का पढ़ लिया, कभी किसका, कभी किसका, अपने शेख है। फरमाया निकलो यहां से, क्यों पढ़ा तुमने, ये अल्लाह वाले अपने इबादत को छुपाते हैं, पता नहीं चलता है। कुछ दिनों के बाद जब हजरत खुश हो गए, बुलाया कारी साहब को, बुलाया उनको, कहा हजरत माफ कर दीजिए, कहा माफ कर दिया मैंने, कहा हजरत मुझे बताइए कि वो नंबरात क्या है, कहा नहीं बताऊंगा, कहा हजरत मैं किसी को नहीं, और मैं एक वादा कर, अगर बताना है तो मेरी मौत के बाद, मेरी मौत के बाद, मेरी मौत से पहले नहीं। कहा ठीक है। इंतकाल के बाद कारी साहब ने लिखा है कि वो हजरत ने मुझे कहा था कि वो नंबरात थे कि मैं रोजाना कितनी बार सलाम तस्बीह पढ़ता हूं। इतना बड़ा मोहतमी मैं, शेखुल हदीस है मदरसे का, मदरसे में गल्ला नहीं था, तो मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 40 साल तक तिर्मिजी शरीफ पढ़ाई है, वहां मेरी मुलाकात हुई हजरत से, और मौलाना अमीर साहब जो वहां पर हदीस की किताब पढ़ाते थे, और मौलाना असदुल्ला साहब, उन्होंने मीटिंग की कि हमें सफर करना चाहिए, कांदला के पास एक गांव है महुआ वहां का, कि वहां गांव वालों से हम अनाज को लेंगे, गल्ला को लेंगे मदरसे के तलबा के लिए। अब मौलाना असदुल्ला साहब का मिजाज जो था बहुत अजीब था, हजरत फरमाते थे कि रास्ते में तलबा से भी जब कभी भी कोई तालिब इल्म मिलता था तो सवाल करते थे हदीस का, कुरान का, फुला फुला। अब रास्ते में तीनों बड़े बुजुर्ग बैठे हैं रक्षा में, हजरत मौलाना असदुल्ला साहब है और हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब है, हजरत मौलाना अमीर साहब है। रास्ते में हजरत मौलाना असदुल्ला साहब ने कहा हम हदीस पर कुछ मुजाकरा करते हैं सफर में, हदीस पर, इधर उधर की बात नहीं, हम कुछ मुजाकरा करना चाहते हैं। अल्लाह वालों की आदतें ये होती है, अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, और अल्लाह वाले जब कुछ कहते हैं तो उसमें बेशुमार बरकतें होती है। मौलाना असदुल्ला साहब ने सवाल किया, बताओ हदीस में तुम तीनों, हम तीनों हदीस पढ़ाते हैं बरसों से, बताओ कौन सी इबादत ऐसी है जिसका सबसे ज्यादा सवाब है, कौन सी इबादत है जिसका सबसे ज्यादा सवाब है। तो हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए अगर कोई अल्लाह का बंदा चलकर आता है तो अबू दाऊद शरीफ और तिर्मिजी शरीफ में है, एक एक कदम पर अल्लाह 1 साल रोजा रखने का और 1 साल तहज्जुद की नमाज का सवाब देता है, तिर्मिजी शरीफ में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। 16 साल से मैं तिर्मिजी शरीफ पढ़ाता हूं, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है कि इंसान हैरान है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए कितनी आसानियां फरमाई है। जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने नूरुल लम्आत फी खसाइसिल जुमआ में लिखा है, फरमाया अगर कोई आदमी जुमा की नमाज के लिए गुसल करके कपड़ा पहन करके मस्जिद की तरफ आता है, उसको एक एक कदम के ऊपर 20-20 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी का फरमान लिखा है। हजरत मौलाना असदुल्ला साहब ने कहा, वाह क्या बात कही आपने, चल कर आना या गाड़ी से आना, कदम कदम पर, एक एक कदम के ऊपर, और खुसूसन रमजान में एक एक कदम पर इतना सवाब है। फरमाया मौलाना अमीर साहब तुम कुछ बताओ। हजरत मौलाना अमीर साहब फरमाते भी कांध लाके, उन्होंने फरमाया من دخل في الاسواق من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير। जो बाजार में दाखिल हो और एक मर्तबा चौथा कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला, अल्लाह उसके एक बल्कि को 10 लाख नेकियां अता फरमाते, अल्फ अल्फ हसना और अल्फ अल्फ सैया, और उसके 10 लाख गुना को माफ कर देते हैं और 10 लाख दर्जा जन्नत में बुलंद हो जाते हैं। और हाकिम की रिवायत तिर्मिजी में भी है, अल्लाह उसके लिए एक मर्तबा चौथा कलमा बाजार में पढ़ लिया, कौन नहीं है जो बाजार से रोजाना नहीं गुजरता। हम गुजरते हैं लेकिन शैतान हमें याद नहीं आ रही, भुला देता है। फरमाया जन्नत में उसका मकान तैयार हो जाता है। मौलाना असदुल्ला साहब ने फरमाया, अब मेरी भी बात सुन लो। इतने बड़े शेख उल हदीस फरमाते हैं, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। कहा मैंने हदीस के जखीरों में पढ़ा है, अगर कोई आदमी सुबह 3 मर्तबा ये कह दे, अल्लाहुम्मा अग्फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, फरमाया दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, चाहे वो औरतें हो चाहे वो मर्द हो, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हो, तमाम के बराबर उसके लिए उसके रिस्क में सवाब लिख दिया जाए। दुनिया के कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, दुनिया के साइंस वाले फेल हो जाएंगे, लेकिन गिन नहीं सकेंगे कितना सवाब 3 मर्तबा पढ़ने से अल्लाह ताला फरमाते हैं। और आगे फरमाया, तबरानी की रिवायत है कि अगर कोई आदमी 25 मर्तबा, और एक रिवायत में है 25 इस दुआ को पढ़ लेता है, अल्लाह उसको मुस्तजाब दावत बना देता है। मुस्तजाब दावत कौन है? ऐसा आदमी जो हाथ उठाए अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। मुस्तजाब दावत ऐसा है जिनकी दुआ से अल्लाह दुनिया के लोगों को रोजी देता है। हदीस के अल्फाज मैंने आपके सामने पढ़े, सिर्फ 3 बार या सिर्फ 27 बार, अल्लाहुम्मा फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा फिर लिल मुमिनीन, यहां तक अल्फाज है, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين। तो मैं बात सुना रहा था कि गल्ला की कमी दारुल देवबंद में हुई, तो मौलाना हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखिए हम एक जलसा रखते हैं, जलसे के अंदर में क्या होगा, दावत दी जाएगी अतराफ के लोगों को, दावत दी गई, करीबन 10-12-15 हजार लोग जमा हो गए और खाने का इंतजाम मौलाना सुल्तानुल हक को देख पर बिठाया गया कि लोगों को खिलाने का काम आपका है। ये मौलाना सुल्तानुल हक है, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम खास है, और एक प्यार में उनको कहते थे सुल्तान डाकू इधर आओ, बहुत प्यार करते थे। ये मौलाना सुल्तानुल हक साहब जो थे, ये मौलाना सुल्तानुल हक साहब जो थे, एक मर्तबा फरमाते हैं, लिखा है हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में कि हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को वो चूजे जो जिंदा होते हैं खूबसूरत सफेद वाले बहुत पसंद थे और अपने घर पर पालते थे, चूजे होते हैं ना छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चे, तो एक मर्तबा कहीं से हम लाए बहुत सारे मुर्गियों के बच्चे, बिल्कुल सफेद सफेद बहुत अच्छे थे। तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना सुल्तानुल हक से कहा, आओ इधर ये एक जोड़ा तुम ले जाओ, मुर्गियों का एक जोड़ा तुम ले जाओ। मैं घर ले जाकर मैंने उसको अच्छी तरह पालना शुरू किया, एक मर्तबा जो मुर्गा था वो गुम हो गया, लॉस हो गया, اور میں بڑا پریشان ہوا کہ حضرت مدنی کا دیا ہوا ایک تحفہ تھا اور میں بہت خوش تھا. وہ کیا ہوا؟ وہ پریشانی میں کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے, وہ ایک عمل کرتا ہے کہ وہ کچھ کاغذ پر لکھتا ہے اور کچھ رکھتا ہے, جو کاغذ پر لکھائی لکھ کر کے آ جاتی ہے کہ وہ کہاں ہے کیا ہوا. تو ویسے چلا گیا, وہ چلے گئے اس کے پاس, حالانکہ جانا نہیں چاہیے تھا. آئندہ کسی موت کی, اپنی زندگی کی, اپنی شادی, اپنا فلا کہ اس کے بارے میں بتاؤ, ایسے لوگوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. سبحان اللہ, یہ تو چلے گئے, انہوں نے کاغذ لیا اور ڈالا, جب نکالا اس پر لکھا کھا لیا گیا, لکھ کر آ گیا کیا, کھا لیا گیا, یعنی آپ کا مرغا کسی نے کھا لیا ہے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا, جب واپس گھر پر آ رہے تھے, عجیب بات سنیے, گھر آ رہے دیکھا وہ سفید مرغے کے اس کے جو پر جو ہوتے ہیں گرے ہوئے تھے, تو یقین آ گیا کسی نے کھا ہی لیا ہے. پھر شام ہوئی تو اپنے دو چار گھر دور پر ایک آدمی نے کہا, حضرت جب وہاں سے گزر رہے تھے تو چل ان کی ملاقات کر لو. اس گھر والے نے کہا میرے گھر پر کسی کا مرغا آ چکا ہے اور میں نے اس کو کیج میں رکھا ہوا ہے. حضرت نے کہا بتاؤ کدھر ہے؟ دیکھا کہ وہ تو مرغے, بھائی تو میرا ہی ہے بھائی. آئے غصے میں, دوبارہ صبح میں اس آدمی کے پاس گئے جس نے یہ بتایا, کھا لیا گیا اس کے پاس. تو ان کے خادم تھے, انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں. اس کے جیب میں قرآن کریم, چھوٹا قرآن کریم تھا خادم کے جیب میں. جب وہاں پر پہنچے یہ دونوں, تو وہاں پر پہنچنے کے بعد کہا بتاؤ کیا ہوا, بتاؤ میرے مرغے کے بارے میں. تو وہ ڈال رہا ہے, کوئی جواب لکھ کر نہیں آ رہا ہے. دوسری بار ڈالا, کوئی جواب لکھ کر نہیں آ رہا. تیسری بار ڈالا, کچھ نہیں. فرمایا بھائی تم میں سے کسی کے پاس کوئی مقدس کتاب ہے؟ یہ ہندو تھا. تمہارے پاس کوئی مقدس کتاب ہے؟ وہ طالب علم نے کہا ہاں میرے پاس قرآن ہے. بھائی ایسا کرو, اس قرآن کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر دور رکھ کر آؤ, اس لیے کہ میں ایک شیطانی عمل کرتا ہوں, تمہارے قرآن کی وجہ سے یہ شیطانی عمل کام نہیں کر رہا ہے. اندازہ کیجئے قرآن کریم کتنی مقدس کتاب ہے, اللہ نے ہمیں دی ہے, اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کھول کر دیکھیں پڑھیں. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. فرمایا یہ قرآن تو ہے اللہ کی رحمت, یہ قرآن تو ہے اللہ کی برکت, لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ بارش مسلا دھار گر رہی ہو اور تم برتن کو الٹا رکھ دے, کیا اس میں کوئی ایک قطرہ آئے گا؟ ایک قطرہ آئے گا؟ ایک بھی قطرہ بارش کا اس میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ آپ نے برتن کو الٹا رکھا ہے. اس برتن کو سیدھا رکھو, اس میں کتنا بارش کا پانی آپ چاہو گے آ جائے گا. فرمایا جب قرآن کو پڑھو, قرآن کو سنو, تو ایسی صورت میں اپنے دل کو حاضر رکھو, اپنے کان کو حاضر رکھو. قرآن میں اللہ کہہ رہے ان نقی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. ایسی صورت میں اللہ کی رحمت تمہارے بدن کے ہر حصے پر اترے گی. حضرت نے مجمع رکھا, میں بات کر رہا تھا, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 15,000 آدمی آگے, مولانا سلطان الحق صاحب دیکھ پر بیٹھے, جن سے مجھے یہ بات یاد آ گئی ان کے قرآن کی, کہ وہ طالب علم کے قرآن کی وجہ سے اس کا جادو اس پر نہیں چلا, اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے. مولانا سلطان الحق فرماتے ہیں کہ میں دیکھ پر بیٹھ گیا, لوگوں نے کھانا کھا لیا, سب لوگوں نے کھا لیا, تو ایک آدمی اخیر میں میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضرت تھوڑا سا چاول مجھے ایک ڈبے میں دے دیجئے. کہا کیوں, کھانا کھایا آپ نے؟ کہا میں نے کھایا, اب کیا ہے, ختم ہو گیا. کہا نہیں, مجھے تھوڑا سا چاول گھر لے جانا ہے, میرے بھائی جو ہے مولانا ہے, عالم ہے, ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے ٹی بی کی وجہ سے. فرمایا نہیں, میں تو امین ہوں, امانت دار ہوں, آپ جا کر پوچھئے حضرت سے, اگر وہ اجازت دے تو میں آپ کو دوں گا, ورنہ نہیں. آج کل شادیوں میں چپ چاپ سے بھر دیتے, گھر والوں کو پوچھا بھی نہیں, یہ چوری ہے, بہت بڑی چوری ہے. گھر والوں کو پوچھنا ضروری ہے, جو مالک ہے انہیں پوچھو کہ فلاں فلاں آدمی لوگ ساتھ میں کھانا بھی کھایا اور اوپر سے برتن بھی لے کر آئے ہیں, کیا ان کو دے سکتے یا نہیں, اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہر لقمہ حرام کا ہے. ہاں ہاں, حضرت نے کہا ٹھیک ہے, ان کو تھوڑا سا دے دو. وہ تو لے گئے, घर पर जाकर उस चावल की उन्होंने पाउडर करके यानी उसको पीस करके उसकी गोलियां बनाई। वो मदरसे का खाना जो था, वो जलसे का जो खाना था, मदरसे का जो खाना था उसको ले गया और उस राइस की गोलियां बनाई और बना करके अपने भाई को रोजाना कुछ 10-12 खिलाता रहा। 3-4 दिन हुए, वो भाई बिल्कुल ठीक हो गया। तीसरे साल जब जलसा हुआ तो वो आदमी उस अपने भाई आलिम को हट्टा कट्टा लेकर आ गया। फरमाया, तुम मुझे पहचानते हो? जलसे में फिर हजरत बैठे हुए थे डेक पर। कहा, तो देखा, जाना पहचाना है लेकिन याद नहीं, हजारों का मजमा होता है। कहा, चलो मुझे भूल गए हो, तुम्हें याद है मैंने तुमसे थोड़ा सा चावल लिया था? कहा, मुझे याद है। फरमाया, उस चावल की मैं, अरे भाइयों, ये बात हमेशा याद रखो, हदीस में आता है जब बंदा दवा पीता है दवा गले से नीचे उतरने से पहले अल्लाह से पूछती है कि इसमें तूने शिफा रखी है या नहीं। अगर अल्लाह की इजाजत हो तो शिफा होती है, वरना नहीं। वरना अगर कोई यकीन रखे दवाई से सब कुछ होता है तो फिर अल्लाह किधर गया? यकीन अल्लाह पर हो, असबाब के दर्जे में दवा है लेकिन उसमें शिफा रखने वाला अल्लाह है। याद रखो, मूसा अलैहि सलाम का जमाना है, बहुत ज्यादा आपको हजरत मूसा अलैहि सलाम को बीमारी लग गई, डायरिया की, यानी बहुत परेशान। अल्लाह ने कहा, फुला जगह जाओ, एक जड़ी बूटी है, उसको तोड़ो, उसको मसल करके पीस कर पी लो। जब पिया बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ सालों के बाद फिर परेशानी हुई, चलो मैं वापस जाता हूँ, उस जड़ी बूटी को लेता हूँ, खा लेता हूँ। खाया तो और बढ़ गया। अल्लाह ने कहा, मूसा, कोहे तूर पर बात कर रहे हो, याद रखो किसी चीज में शिफा नहीं जब तक मैं ना रखूं उसमें। उस वक्त मैंने शिफा रखी थी। फरमाया, ये आदमी है, इसने कुछ गोलियां खा ली राइस की, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो हजरत ने फरमाया, अजीब बात, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, जब हजरत मौला सुल्तानुल हक साहब ने कहा, हजरत हर साल जलसा होना चाहिए, अब तो माशाल्लाह अनाज बहुत ज्यादा हो गया है, तो हजरत मौला हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर साल बुलाएंगे तो इतनी इज्जत नहीं रहेगी, इतनी वक्त नहीं रहेगी। फिर हदीस सुनाई अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा वो सहाबी है जो हर वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे, ये आशिक रसूल थे। याद रखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अजीब फरमान है। फरमाया, एक सहाबी आए और आने के बाद कहा, अल्लाह के रसूल, जब हम दुनिया में मौजूद है, जब कभी आपकी याद आती है, हम अपने कामकाज को इधर उधर छोड़कर, वी लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड वी कम टू यू, और आपकी जियारत करते हैं, तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है, सुकून मिल जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल, आप भी दुनिया से इंतकाल करने वाले हैं, हम भी इंतकाल करने वाले हैं, और जन्नत के तो दर्जात हैं, आप तो बहुत ऊंचे दर्जे पर होंगे जन्नतुल फिरदौस में, और आपका उम्मती तो नीचे दर्जे में होगा, तो आपकी जियारत कैसी होगी? अगर आपसे मुलाकात नहीं होगी तो हम तो जन्नत में भी सुकून से नहीं रहेंगे। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या होगा? हाँ, जन्नत में दर्जात है, मोमिनीन के दर्जात है, जैसे जैसे आमाल होंगे वैसे दर्जात जन्नत में, वो आला से आला होता जाएगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा, फरमाया, अल्लामा आबिदीन ने इसको नकल फरमाया कि हजरत क्या बात है, क्या गुजरी है आप पर? फरमाया, अल्लाह के सामने में हाजिर हुआ, अल्लाह ने मुझे कहा, अहमद बिन हम्बल, सुन, मुझे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद, अगर तुम्हें सजा देनी होती तो मैं तुझे कुरान और हदीस का इल्म न देता, कुरान और हदीस का मैं तुझे इल्म न देता, मैंने तुझे कुरान और हदीस का इल्म दिया है। हाँ भाई, याद रखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बड़ी अजीब, अल्लाह का कलाम बहुत ही अजीब कलाम है, सुभान अल्लाह। उस पर फरमाया इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि से, मैं तुम्हें सजा देना होता तो फिर मैं तुम्हें कुरान का आलिम न बनाता, हदीस का आलिम न बनाता, जाओ जन्नत में। तो कहा, अच्छा, आप तो जन्नत में हैं, इमाम अबू यूसुफ का दर्जा कहां पर है? फरमाया, वो तो मुझसे बहुत ऊंचे जन्नत में है, उससे भी बड़ी ऊंची जन्नत में। फरमाया इमाम आजम का क्या हाल है? फरमाया इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो और ऊंची जन्नत में है। 7 दिन के बाद हजरत इमाम आजम की मुलाकात होती है, वो बहुत ऊंची जन्नत में है। हाँ, कुरान इतनी बड़ी दौलत है। हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमत शाह अब्दुल कादिर साहब शाह वलीउल्लाह साहब के छोटे बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के भाई होते हैं। मेरे भाइयों सुनो, जब उन जिन्होंने कुरान का तर्जुमा लिखा है और इल्हामी तर्जुमा है, इल्हामी कश्फ ऐसा तर्जुमा लिखा है, जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर उनको कब्रिस्तान में दफन किया तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े साहिब कश्फ करामत है। फरमाया इस कब्रिस्तान वालों को अजाब हो रहा था, इस अब्दुल कादिर जो हाफिज कुरान, जिसको कुरान से बहुत मोहब्बत थी, कुरान से बहुत शगफ था और कुरान का तर्जुमा लिखा, इनको जब दफन किया गया कब्रिस्तान में, इनकी बरकत से अल्लाह ने पूरे कब्रिस्तान वालों की मगफिरत फरमा दी है। जौनपुर में एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे जौनपुर में। वो एक मर्तबा मकबरे से कहीं सफर में गए होंगे, वापस मकबरे से गुजर हुआ, जाते हुए उन्होंने सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर, याद रखो मुल्लारी कारी रहमतुल्लाही फरमाते हैं मिश्कात की शरह में, अगर कोई आदमी कब्रिस्तान में जाए और एक मर्तबा अलहाकुम तकासुर पढ़े और एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़े और मरहूमीन को उसका सवाब पहुंचा दे, खुदाए पाक की कसम कयामत के दिन इस कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उसके लिए सिफारिश करेंगे। कयामत के दिन ये सारे मुर्दे उसके लिए सिफारिश करेंगे। ये बुजुर्ग जिन्होंने पढ़कर इनको बख्श दिया, लेकिन साथ में जब करीब में एक बहुत बड़े दूसरे आलिम थे, उनकी मुलाकात हुई, उनसे कहा भाई इस कब्रिस्तान में बहुत सारे लोगों को अजाब हो रहा था, क्या हुआ? अल्लाह ने अजाब को हटा लिया। फरमाया कोई बड़ी बात नहीं है, अभी अभी इस विलेज से, इस गांव से एक हाफिज कुरान का इंतकाल हुआ और इस कब्रिस्तान में उसको दफन किया। फरमाया लगता है उस कुरान की बरकत से अल्लाह ने पूरे कब्रिस्तान वालों की मगफिरत फरमा दी। कुरान करीम बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल कैसे होगा? फरमाया अल्लाह कयामत के दिन इंतजाम करेगा, जब तुम्हारे दिल में आएगा कि अल्लाह मुझे अल्लाह के नबी को देखना है, अल्लाह तुम्हारे लिए इंतजाम कर देगा, जितनी बार देखना चाहोगे अपने नबी को देख लोगे। फिर कभी सुनाऊंगा कि जन्नतुल फिरदौस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी कैसे बन सकता है, कौन कौन से आमाल है, हदीस में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल मरउ मा अहब्बा के तहत में इंशाल्लाह फिर वाकियात सुनाऊंगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। रमजान का मगफिरत का अशरा भी गुजर रहा है, हमें अभी तक तौफीक नहीं हुई कुरान खोलने की, कब तौफीक होगी? याद रखो, आखिरी बात कह देता हूं, मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मजालिसुल अबरार में लिखा है कि कोई आदमी घर में कुरान है उसको तौफीक नहीं होती है, साल साल निकल जाता है, वो कुरान उस घर वालों के लिए बद्दुआ करता है, अल्लाह जिस तरह इन्होंने कोने में रखा है तो इसको भी जन्नत की कोने में रख दे। अल्लाह अल अमान व हफीज, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह इस रमजान के और मगफिरत के आशरे की बरकत से अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह कुरान से हमें सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अरे भाई नहीं आता है, पढ़ने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, अगर ये भी नहीं तो दूसरा तीसरा कलमा रोजाना 100 मरतबा पढ़ लो, अल्लाह वो भी अता फरमाएंगे सवाब। अल्लाह पाक मुझे और हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
اللهم صل على محمد.